सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य देशों के सफल दौरे से जुड़े निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जे श्रीवास्तव।
भारत ने हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को स्पष्ट रखा है और अब ऑपरेशन सिंदूर की स्पष्ट और स्थापित सफलता के बाद वक्त आ गया है कि पूरे विश्व को आतंकवाद और आतंकी समर्थकों के बारे में बताया जाए, जागरूक किया जाए और वो भी सबूतों के साथ। इसी वजह से भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत कई बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल विश्व भर में आतंकवाद का सच बताने के लिए यात्रा पर गए। इन्हीं में से चार प्रतिनिधि मंडल अब भारत लौट आए हैं। तो आइए जानते हैं इस अहम फैसले के पीछे की वजह, इसकी सफलता, इसके लाभ और भविष्य में इसके राजनीतिक और वैश्विक अर्थ। इस अहम चर्चा को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, रणनीतिक विश्लेषक श्री अतुल अनेजा जी। अतुल जी, स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
धन्यवाद वैभव जी।
अतुल जी, कई प्रतिनिधि मंडल पूरे विश्व की यात्रा पर गए, पाकिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवाद समर्थकों का सच पूरे विश्व को बताया। कितना जरूरी फैसला था ये भारत सरकार का इस तरह के प्रतिनिधि मंडल को विश्व भर में भेजने का? क्या वजह रही इसके पीछे और इसकी सफलता को कैसे देखते हैं आप?
वैभव जी, एक बहुत ही इनोवेटिव ये मूव थी। पहले तो उनकी कॉम्पोजिशन बहुत इंटरेस्टिंग थी कि सब पार्टीज के लोग थे उसके अंदर, और ये मैसेजिंग बहुत जरूरी थी और कई तरह की मैसेजिंग गई है जिस तरह से ये पूरे दल गए हैं। तो विश्व के हर कोने में ये लोग गए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो कॉन्टेक्स्ट कि क्यों भारत ने ये काम किया, जो ऑप सिंदूर लॉन्च किया है आतंकवादी हमले के बाद, उसकी वजह क्या थी, मूल कारण क्या थे। जीरो टॉलरेंस की आपने बात की, वो जीरो टॉलरेंस क्यों है, क्योंकि ये पहली बार नहीं आतंकवादी हमला हो रहा, ये पहले भी 2008 से हम देख रहे हैं, उसके भी पहले से जो मुंबई अटैक्स हुए थे और भी कश्मीर में बहुत सारे अटैक्स हुए थे, कि अब ये समय आ गया कि हमारी जीरो टॉलरेंस है और हमने वो सिर्फ बातों में नहीं कहा बट एक्शन करके दिखाया। आई थिंक वो मैसेजिंग बहुत जरूरी थी। दूसरी बात, सिर्फ एक दलील देने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं गए थे, लेकिन भारत की जो नई नीति है वो बहुत जरूरी थी कि नए भारत में अगर ऐसा कोई आतंकवादी हमला दोबारा होगा तो हम उसका पूरी तरह से कार्रवाई होगी, और ये ऑप सिंदूर एक उसका उदाहरण था। पूरी विश्व को एक तरह से प्रिपेयर करने की जरूरत थी कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कोई आतंकवादी कदम उठाया तो द वर्ल्ड शुड रिकॉग्नाइज कि जो एक्शन होगा वो प्रोएक्टिव एक्शन होगा और उसी तरह से कोई उसमें अचंभित होने की बात नहीं है। एक तरह से भारत ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा न्यू नॉर्मल क्या था। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सरकार ये नहीं कह रही थी, सारे दल भारत की एक वॉइस कह रही थी, क्योंकि सारे यूनाइटेड एक तरह से ये सारी टीम्स गई थी। तो एक तरह से ये पूरे विश्व को नए भारत की सोच और नए भारत की नीति आतंकवाद के प्रति क्या है ये पूरी तरह से समझा दिया गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण था।
तो नए भारत में अनेकता और एकता को साथ में लेकर जो ये फैसला लिया गया, और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि ऐतिहासिक रूप से जरूरी फैसला था। आइए भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी जी के शब्दों को सुने, जो इन्हीं प्रतिनिधि मंडलों में विश्व भर की यात्रा करके अभी अभी भारत लौटी हैं।
यह बात मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ और जोर देकर कहना चाहूंगी कि सब जगह भारत को बहुत सम्मान दिया जाता है, भारत की बातें सुनी जाती हैं, और भारत में अप्रैल 22 को जो घटना हुई उसकी सबने मिलकर कठोर निंदा की, और आतंकवाद का उन्मूलन सबका लक्ष्य है। सबने पाकिस्तान के रवैये की आलोचना की कि निंदा की, यह हमें बहुत अच्छा लगा। कहीं न कहीं ऐसा महसूस हुआ कि हम सब देश एक साथ खड़े हैं। भारत देश शांतिप्रिय देश है, हिंसा का विरोध करता आ रहा है, महात्मा बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, और इसलिए इस देश में इस तरह के हिंसा के कार्य नहीं होने चाहिए।
अतुल जी, जैसा कि भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी जी ने कहा कि भारत देश महात्मा बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, लेकिन ये नया भारत भी है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि टॉक और ट्रेड टेरर के साथ यानी आतंकवाद के साथ नहीं चल सकते, आपके इसके ऊपर क्या विचार है?
बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से रेड लाइन ड्रॉप की गई है क्योंकि पहले भी हुआ है, आपको याद होगा 2008 में कितना भारी आतंकी हमला हुआ था मुंबई के ऊपर।
जी हाँ।
लेकिन उसमें हम लोग टॉक में एक तरह से उलझ गए, पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई, काफी देर तक एक्सचेंजेस हुए, वॉइस सैंपल्स तक देने की बात आ गई, लेकिन उसके आगे बात बढ़ी नहीं और टॉक के बाद कुछ हुआ नहीं। फिर हम देखते हैं बदलाव, पठानकोट का जब आतंकवादी हमला हुआ तब भी उसके बाद एक ज्वाइंट तरीके से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि उसका हल निकले, लेकिन हमको पता लग गया कि ये हमको उलझाने की ही एक तरकीब है और उसके ऊपर पाकिस्तान की मंशा जो है वो जो रूट कॉजेज हैं उसकी तरफ जाने की उनकी मंशा नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रवैया बदला, जैसे कुछ जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिसी शिफ्ट हुई है और पॉलिसी शिफ्ट हुई है जो बालाकोट के अटैक्स हुए हैं और उसके बाद ये पहलगाम का हमला हुआ है। तो भारत की जो मंशा उसको एक्सपैंडेड तरीके से हमने दिखाया और एक फुल ब्लोन ऑपरेशन हमने लॉन्च किया और बहुत ही सक्सेसफुली उसको लॉन्च किया। तो एक तरह से अब न्यू नॉर्मल जो भारत का है वो दुनिया को समझ में आ गया, खास करके पाकिस्तान को समझ में आ गया और मुझे लगता है कि ये टेरर और ट्रेड वाले जो फॉर्मुलेशन है ये पूरी तरह से हमने लागू की है। और दूसरी जो एक और इसमें बात आ गई है कि वाटर एंड टेरर ऑल्सो डोंट गो टूगेदर, तो ये भी एक बात है कि जिस तरह से हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर जो एक तरह से रुख अपनाया है वो भी एक तरह से हमारी नीति में एक बदलाव है। और जो जीरो टॉलरेंस की बात हमने शुरू में की कि उसके दांत हैं, मतलब एक तरीका है, इट हैज गॉट टीथ, कि भाई हम अब एक्शन में आ गए और हम वॉक द टॉक में बिलीव करते हैं कि जो हमने कहा है कि आतंकवाद नहीं टॉलरेट होगा और बहुत हो गया वो हमने अब करके दिखाया। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से पाकिस्तान समझ गया होगा क्योंकि अटैक्स जो हुए हैं वो सिर्फ टेरर हॉटस्पॉट्स पे नहीं हुए हैं जैसे भवालपुर और मुरिदके में, लेकिन पाकिस्तान का नूर खान बेस जैसे है वो एक बहुत ही बड़ा एक न्यूक्लियर कमांड सेंटर पाकिस्तान का वहां पर है, वहां अटैक हुए, सरगोधा में अटैक हुए, पूरी तरह से इन डेप्थ पाकिस्तान की कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कराची के पास अटैक हुए हैं और बड़े स्ट्रेटेजिकली चोजन टारगेट्स थे। और साथ में हमने ये भी दिखाया कि अगर पाकिस्तान वापस कार्रवाई करता है जिस तरह से ड्रोन हमले हुए हैं और जैसे उनके मिसाइल अटैक्स हुए हैं, हमारी एयर डिफेंस ने उसको पूरी तरह से विफल कर दिया। तो एक तरह से मैसेजिंग इज कंप्लीट कि अब मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान हिमाकत करेगा फिर से ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिसे कहा है कि अगर करोगे तो फिर उसके बाद ये तो शायद शुरुआत थी हमारी, तो इसके बड़े पैमाने में भी मुझे लगता है कि हमारी जो रिटेलिएशन होगी वो बहुत ही कठोर होगी।
बिल्कुल, वैश्विक तौर पे किस तरीके से हम पाकिस्तान को आइसोलेट यानी दरकिनार करने में सफल रहे हैं और कितना ज्यादा जरूरी है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के लिए, भारत के भविष्य में होने वाले एक्सपोर्ट्स के लिए और भारत की छवि के लिए।
देखिए, एक बात जो साफ हो गई है कि भारत में बने हुए हथियार जैसे इस्तेमाल हुए हैं, ब्राह्मोस का इस्तेमाल हुआ है और आकाश मिसाइल्स का यूज हुआ है, ड्रोन्स की कैपेबिलिटी हमारी है, तो मुझे लगता है कि एक तरह से जो मेक इन इंडिया में जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसके एक्सपोर्ट्स के जिस तरह से इंक्वायरीज आ रही हैं उसकी जो पोटेंशियल है वो सामने नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है एक तो वो जो डिफेंस ट्रेड की बात है या डिफेंस इक्विपमेंट की बात है वो तो एक पहलू इसमें से निकला ही निकला है, लेकिन जो ओवरऑल भारत की छवि है, जो जज्बा है, वो भी घर कर गया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वैभव जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंटरनेशनल मीडिया है खासकर बड़े बड़े अखबार वो भारत की फेवर में नहीं है और ये हम पहले से देख रहे थे, इसीलिए बहुत जरूरी था कि ऐसा दल जाए, एक ऑल पार्टी टीम जाए जो विश्व के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स को डायरेक्टली समझाएं कि असलियत क्या है। आपको तो याद होगा कि पाकिस्तान हार के भी जश्न मना रहा था, तो एक तरह से एक जो ये ऑप सिंदूर में एक और चीज आई है वो इन्फॉर्मेशन वॉर की बात आई है कि कैसे इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के सामने प्रेजेंट किया जाता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, वीडियो की डॉक्टरिंग कैसे होती है
या कहें कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है
पूरी तरह से, तो उसको भी नकारने के लिए बहुत जरूरी था कि ऐसा दल जाए और आगे जाके वो विश्व के ओपिनियन मेकर्स को समझाए कि असली बात क्या है और भारत की आगे की नीति क्या होने वाली है। मुझे लगता है कि इसके लिए भी ये बहुत जरूरी था, मिसपरसेप्शन जो आ रही थी उसको एक तरह से करेक्ट करने की बहुत बड़ी जरूरत थी। और वो जिस तरह से टीम्स बनी है ना वैभव जी, उसमें आप देखे स्किल्स जैसे जिस तरह से चूज किया गया है लोगों को, शशि थरूर एक तरफ है और साथ में सलमान खुर्शीद उसमें आए, आनंद शर्मा आया और सुप्रिया सुले, ये सब मजे हुए खिलाड़ी हैं। और साथ साथ आप देखेंगे हर एक टीम में जो है एस डिप्लोमेट्स, एक्स डिप्लोमेट्स साथ साथ उसमें थे, बरुद्दीन वहां पर थे, संधू जी थे, तरनजीत संधू, तो हर एक टीम कॉम्पोजिशन थी बहुत ही बैलेंस संतुलित, और उसमें जो क्षमता थी स्किल सेट पूरा था ताकि ये जो बात है डिप्लोमेटिकली पूरी तरह से समझाई जाए। मुझे लगता है कि बहुत ही ब्रिलियंट मूव थी ये, और उसका असर जरूर हुआ होगा।
अनेकता में एकता का संदेश भारत ने पूरे विश्व में दिया है, लेकिन साथ ही साथ मेक इन इंडिया की सफलता को भी किस तरीके से हमने पूरे विश्व के सामने रखा और ये बताया कि भारत के आंतरिक मामलों में हम बाहरी दखल अंदाजी नहीं सहेंगे। आपके विचार?
बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था कि ये हमारा जब कोर इंटरेस्ट आते हैं तो उसके ऊपर जो डिसीजंस होंगे वो हमारे होंगे। वो अब वक्त आ चुका है, पहले भी हमने देखा है 2014 के बाद कि भाई हम दबाव में आने वाले नहीं हैं और जो हमें करना होगा हम करेंगे। इस बार तो ये भी था वैभव जी के न्यूक्लियर धमकियां जो आ रही थी कि हम आपको उस पर अटैक करें, उस पर भी हमने अपनी कार्रवाई की है कि आप करते रहो जो मर्जी आपने हमें थ्रेटन करना है न्यूक्लियर स्ट्राइक्स वगैरह से, लेकिन जो हमें करना है वो एक तरह से जो दृढ़ता थी डिसीजन मेकिंग थी और जज्बा था, और साथ साथ जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में बदलाव आया कि भाई हम फिर अगर जाएंगे तो फिर हम ऑफेंसिव अटैक्स करेंगे, हमारे ऊपर हमला हुआ है उसके रिस्पॉन्स में जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स है उसमें बदलाव है कि किस तरह से ऑफेंसिवली गए हमारे एयरफोर्स की जिस तरह से कार्रवाई हुई, और पूरी तरह से अगर आप विजुअल्स अब देखें जो हुआ है जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स जिस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है या मुरीदकी में लश्कर तैयबा का हुआ है वो देखने लायक है कि हमने फिर आतंकवाद के खिलाफ जो करना है तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उसमें फिर हम ये 1987 का IPKF ऑपरेशन नहीं है जो पीछे हाथ बांध के हम गए थे श्रीलंका में, ये नया भारत है और इसमें जो हमारे मिलिट्री डॉक्टर्स भी हैं वो भी हमारे तरीके से हम अप्रोच करेंगे। एक बार जो हमने तय कर लिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है तो पूरी लड़ाई है, उसमें पीछे हटने वाले नहीं है।
बिल्कुल, एक नया भारत, एक मजबूत भारत, एक ऐसा भारत जो विश्व गुरु के अपनी छवि को उजागर करने में और स्पष्ट करने में बहुत आगे है। लेकिन इसी बीच अगर भारत के ही राजनीति के एक नेता ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जो हमारी सेना के मोराल को बूस्ट ना करे, हमारी सेना के मोराल को डाउन करे या उस पर सवाल उठाए, क्या आपको लगता है कि एक वक्त में जब पूरा भारत कास्ट क्रीड रिलीजन हर चीज को दरकिनार करके एक साथ खड़ा है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसी टिप्पणी देना क्या ये सही है ऐसे वक्त में?
मुझे नहीं लगता बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है इस तरह की टिप्पणियां करना। मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय बात है ये जिस तरह से एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बिहेव किया। मुझे याद आ रहा है 71 की लड़ाई में, वो बहुत छोटी उम्र थी लेकिन जब जीत हुई थी हमारी बांग्लादेश के ऊपर और इंदिरा गांधी हमारी लीडर थी तो सारी ऑपोजिशन ने जो है बहुत स्वागत किया था। तो मुझे लगता है कि कहीं हम बीच में ऑपोजिशन भूल रही है या कुछ नेता ऑपोजिशन के भूल रहे हैं कि करेक्ट बिहेवियर क्या होता है। नेशनल कॉज के लिए आप ऑपोजिशन हो, आप दुश्मन नहीं हो देश के, साथ में आपको जुड़ना है। तो मुझे तो अचंभित करने वाली बात हुई कि इस तरह का स्टेटमेंट जो मैंने कल उसके जो वीडियोस देखे।
अतुल जी, इतनी अहम चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि भारत यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और बहुत जल्द एक विकसित देश बनकर पूरे विश्व के सामने उभरेगा।
धन्यवाद वैभव जी।
अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य देशों के सफल दौरे से जुड़े निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में